नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त जगत चंदौली
और मैं प्रेमा नेगी
और हम लेकर हाजिर हैं आपके लिए आपका पसंदीदा कार्यक्रम जिसका नाम है
नई दिशा। और आज हमारी श्रृंखला का ये 20वां एपिसोड है।
दोस्तों, इस कार्यक्रम का मकसद आप तक HIV के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी पहुंचाना है ताकि आप HIV के प्रति जागरूक हो सकें।
दोस्तों, आपके भेजे हुए पत्र और SMS हमें लगातार मिल रहे हैं जो इस बात का सबूत है कि आपको ये कार्यक्रम कितना पसंद आ रहा है।
मगर दोस्तों, आप में से बहुत से लोग हैं जिनके मन में अभी भी बहुत से सवाल और HIV से जुड़ी बहुत सी आशंकाएं हैं और आपने अभी तक हमें कोई भी खत, ईमेल या SMS नहीं भेजा है। तो फिर जल्दी से नोट करें,
हमारा ईमेल ID NAYEEDISHAA@gmail.com
और हमारा SMS नंबर है 9717678223 यानी 9717678223 और हमारा एड्रेस है कार्यक्रम नई दिशा 170 बेसमेंट अशोका इनक्लेव 3 सेक्टर 35 फरीदाबाद 121003 हरियाणा। तो प्रेमा, ये प्रोग्राम खत्म होते होते देखते हैं हमें कितने SMS और ईमेल मिलते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आप चाहेंगे तो आपका नाम हम गुप्त रखेंगे।
और आइए दोस्तों, अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आपको लेकर चलते हैं अपने पहले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है जानो अनजाने। अच्छा जगत, तुम पूरे दिन में लगभग कितने लोगों से हाथ मिलाते होगे?
अरे ये कैसा सवाल है प्रेमा?
अरे पहले बताओ तो।
भाई यही कोई 10, कभी 20 और हाँ कभी कभी 50 भी हो जाते होंगे।
और कभी बाहर लोगों के साथ खाना भी खाते होगे?
हाँ कई बार।
अच्छा, अगर मान लो तुम्हें पता ना हो और उनमें से कोई HIV पॉजिटिव हो तो?
तो कुछ भी नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि HIV का वायरस हाथ मिलाने से, साथ बैठने से, साथ खाना खाने से, गले मिलने से या फिर चूमने से नहीं फैलता।
तो दोस्तों, यही वो बात थी जिसे मैं आज आपको जानो अनजान में बताना चाहती थी। उम्मीद है आपको भी अब ये बात समझ में आ गई होगी। तो अगर आपके आसपास कोई HIV पॉजिटिव व्यक्ति है तो आपको उससे दूरी बनाने की कोई जरूरत नहीं है। उसके साथ आप वैसे ही व्यवहार रख सकते हैं जैसे बाकी दूसरे लोगों के साथ रखते हैं।
वैसे दोस्तों, मानना पड़ेगा कि प्रेमा का किसी भी बात को बताने का अंदाज काबिले तारीफ है।
वो तो है जगत, क्योंकि जिंदगी एक सुहाना सफर है और इस सफर में सबसे जरूरी है कि हम हमेशा प्यार और संभावना का ही व्यवहार करें।
जिंदगी एक सफर तो है प्रेमा, सुहाना है या नहीं वो तो हम पर निर्भर है। और फिर कल क्या हो ये किसने जाना।
जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। उड़ले उड़ले हो उड़ले उड़ले हो।
और हाँ दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं पिछले हफ्ते पूछे गए सवाल का जवाब। पिछले हफ्ते हमने आपसे पूछा था ART क्या है और इसका सही जवाब है ऑप्शन D यानी कि एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी।
और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज एपिसोड 15 के विजेता का नंबर है।
जी हाँ दोस्तों, और एपिसोड 15 के सवाल का सही जवाब देकर विजेता बने हैं संजय दिल्ली से।
हमारी तरफ से आपको भेजा फ्राई कैब बहुत बहुत मुबारक हो।
और अब बुलाते हैं क्विज मास्टर जी को।
और आज का सवाल है, ART किस परिस्थिति में दिया जाता है? अपना सवाल फिर से सुनिए, ART किस परिस्थिति में दिया जाता है? और आपके ऑप्शंस हैं ए जुखाम लगने पर, बी बुखार होने पर, सी दस्त होने पर और डी जब शरीर में CD4 काउंट 200 से कम हो जाता है। अपने ऑप्शन फिर से सुनिए, ए जुखाम लगने पर, बी बुखार होने पर, सी दस्त होने पर और डी जब शरीर में CD4 काउंट 200 से कम हो जाता है।
तो दोस्तों, अगर आप भी ये भेजा फ्राई कैप जीतना चाहते हैं तो फटाफट अपना फोन उठाइए और उसके मैसेज बॉक्स में जाकर टाइप कीजिए ND20 भेजा फ्राई स्पेस और अपना जवाब ABC या D और लिखकर भेज दीजिए 9717678223 8223 पर यानी 9717678223 पर।
और आइए दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट आमने सामने की तरफ।
दोस्तों, सबसे पहले हम स्वागत करते हैं हमारे आज के मेहमान का।
आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
प्लीज अपना छोटा सा परिचय हमारे श्रोताओं को दीजिए।
शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए। मेरा नाम मोहम्मद अफसर है, मैं इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन में काम करता हूँ।
आपसे हमारा पहला सवाल है, HIV पॉजिटिव लोगों के क्या अधिकार हैं जो उनके काम और रोजगार से जुड़े हुए हैं?
रोजगार की जहाँ तक सवाल है, जो ILO कोड ऑफ प्रैक्टिस कहता है, जो गाइडलाइंस देता है गवर्नमेंट को, वर्कर्स को और एम्प्लॉयर्स को पॉलिसी बनाने के लिए, वो ये कहता है कि HIV को भी बाकी बीमारियों की तरह ही समझा जाए। और HIV से जो वर्कप्लेस है, बहुत स्पेसिफिक इश्यूज हैं। वो पहला ये है, जांच HIV की जो है वो मैंडेटरी नहीं होना चाहिए। उसके लिए आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते कि उसकी जांच कराई जाए। उसको वॉलंटरी होना चाहिए और जांच कराने से पहले उसकी कंसेंट लेना या उसकी मंजूरी लेना बहुत जरूरी है। दूसरा अधिकार का मुद्दा होता है डिस्क्रिमिनेशन का, कि HIV पॉजिटिव वर्कर के साथ किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि उससे बाकी वर्कर्स को कोई खतरा नहीं है, वो काम कर सकता है, वो हेल्दी लाइफ जी सकता है, इसलिए उसके साथ किसी तरह का भेदभाव ना किया जाए। तो जब हम वर्कर को अपॉइंट करें, नियुक्त करें, तो HIV जांच ना कराएं, हम सिर्फ ये देखें कि वो अपना काम करने के लिए फिट है या नहीं।
अफसर साहब, क्या ये अधिकार कानूनी तौर पर बाध्य हैं?
अगर आप इंडिया की सिचुएशन देखें, तो इंडिया का जो सबसे बड़ा कानून है, जिसको हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहते हैं, संविधान है, जो खासतौर से पब्लिक सेक्टर में पूरी तरह से लागू है, उसके तहत तो ये बाध्य है कि आप किसी का रोजगार इसके बिना पर नहीं ले सकते। और हमने बहुत से अच्छे कोर्ट जजमेंट्स भी देखे हैं जिसमें ये कहा गया है कि जब तक आदमी काम करने के लिए फिट है, तब तक उसको काम में रखा जाना चाहिए। महज इस बिना पे कि वो HIV पॉजिटिव है, उसको काम में ना रखा जाए या उसको प्रमोशन ना दिया जाए, ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। थोड़ा उल्लंघन प्राइवेट सेक्टर में जरूर नजर आता है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में ऐसे इश्यूज आ रहे हैं जहां पे लोगों को फोर्सिबली टेस्ट किया जाता है जॉब देने से पहले, कहीं कहीं प्रमोशन भी नहीं दिया जा रहा है, तो वो उन इश्यूज को करने की बात भी हो रही है। अब एक कानून बनाने की इंडिया में बात चल रही है जिसको प्राइवेट सेक्टर पे भी लागू किया जाएगा।
अफसर साहब, और अनौपचारिक क्षेत्र में कैसी चुनौतियां हैं?
अनौपचारिक क्षेत्र हिंदुस्तान में बहुत बड़ा है। हिंदुस्तान में जो 400 मिलियन मजदूर हैं, उसमें 93% अनौपचारिक क्षेत्र में है। जो एक कॉन्ट्रैक्ट होता है सर्विस का, वो बहुत ज़्यादा क्लियरली डिफाइंड नहीं है। मतलब जो नियोक्ता और जो काम करने वाला मजदूर है, उसके बीच में क्या अनुबंध है, किस तरह का कॉन्ट्रैक्ट है, उसका कोई बहुत क्लियर लेखा जोखा नहीं होता है। कभी भी उनको रखा जाता है, कभी उनको निकाल दिया जाता है, कभी उनको मिनिमम वेजेस दिए जाते हैं, कभी नहीं दिए जाते हैं। कोई भी जो वर्कर्स से वेलफेयर या वर्कर्स के राइट के इश्यूज हैं, वो अनौपचारिक क्षेत्र में उनको इम्प्लीमेंट करा पाना अपने आप में एक चुनौती है। तो अपील इस प्रोग्राम के जरिए मेरी यही होगी, चाहे वो पब्लिक सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर हो, कि इसको बारे में जाने और अपने वर्कफोर्स को प्रोटेक्ट करने की पूरी पूरी कोशिश करें, क्योंकि हम चाहे जितना तरक्की कर जाएं टेक्नोलॉजी में, ह्यूमन रिसोर्सेज जो हैं वो हमारे हमेशा इम्पोर्टेंट रहेंगे।
आप हमारे कार्यक्रम में आए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां हमें दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
थैंक यू वेरी मच।
तो दोस्तों, मेरा आपसे अनुरोध है कि अगर आप में से कोई भी HIV पॉजिटिव है और कोई आपके साथ भेदभाव करता है, तो उसका जरूर विरोध करें,
क्योंकि किसी को भी आपसे आपका अधिकार छीनने का कोई हक नहीं है।
जी हाँ,
आदमी आजाद है, देश भी स्वतंत्र है, राजा गए रानी गई, अब तो प्रजातंत्र है।
और दोस्तों, अब समय हो चुका है आपकी बात का। तो दोस्तों, आज का हमारा सवाल दिल्ली से है और पत्र भेजने वाले का नाम हम गुप्त रख रहे हैं। इन्होंने लिखा है कि मैं 21 साल की हूँ और मैंने कल ही सेक्स किया, उसके बाद मैंने IPL ले लिया, क्या फिर भी मुझे एड्स का खतरा है? जी हाँ, बिल्कुल खतरा है। IPL HIV एड्स से सुरक्षा प्रदान नहीं करती। HIV से सुरक्षा केवल तभी है जब सेक्स के दौरान आपने कॉन्डोम का इस्तेमाल किया हो। अगर कॉन्डोम का इस्तेमाल नहीं किया तो HIV का खतरा बिल्कुल है।
और हाँ, आपकी जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि IPL केवल अनचाहे गर्भ से सुरक्षा देती है। इसका इस्तेमाल तभी करना चाहिए जब इसकी खास जरूरत हो। वैसे आप अगर रोजमर्रा की जिंदगी में सेक्स या संभोग करती हैं, तो दूसरे गर्भ निरोधक तरीकों का प्रयोग करें। अगर आप अपने साथी को कॉन्डोम का प्रयोग करने के लिए कहेंगी, तो अनचाहे गर्भ, यौन रोगों और HIV तीनों से सुरक्षित रहेंगी। दोस्तों, अगर आप भी कुछ HIV के संबंध में जानना चाहते हैं तो बेझिझक अपना सवाल हमें चिट्ठियों और ईमेल के जरिए भेज सकते हैं।
और इसके अलावा कार्यक्रम को लेकर आपकी कोई राय या फिर कोई सुझाव है तो वो भी आप हमें भेज सकते हैं।
चिट्ठी भेजने के लिए हमारा पता एक बार फिर नोट करें। कार्यक्रम नई दिशा, 177 बेसमेंट, अशोका इनक्लेव 3, सेक्टर 35, फरीदाबाद 121003, हरियाणा।
और हमारा ईमेल एड्रेस है नई दिशा NAYEEDISHAA@gmail.com। और अब हम आपको बिना इंतजार करवाए सुनाते हैं धारावाहिक जीवन की राह की 20वीं कड़ी। पिछले हफ्ते के एपिसोड में आपने सुना, सुमन बदहवास हालत में दौड़ती हुई कटोरी से टकरा जाती है। कटोरी को सुमन की हालत देखकर उस पर शक हो जाता है। सुमन को लगता है कि वो भी माँ बनने वाली है और वो ये सोचकर डर जाती है।
उधर मुंबई में जयपाल चंदा से मिलने पहुँचता है, जिसकी मृत्यु जयपाल की आँखों के सामने हो जाती है और एड्स से होने वाली मौत का डर जयपाल के मन में बैठ जाता है। आइए अब सुनते हैं आगे।
जरा देखना तो किसका फोन है।
हाँ जी, उठाती हूँ।
किसका फोन होगा? हेलो
हेलो हेलो शीला।
हाँ जी
शीला, मैं डॉक्टर दिव्या बोल रही हूँ, सिटी हॉस्पिटल से।
जी नमस्ते डॉक्टर।
नमस्ते।
कहिए डॉक्टर, आपने कैसे फोन किया?
शीला, क्या तुम आज यहाँ हॉस्पिटल आ सकती हो?
क्यों डॉक्टर, कुछ खास बात है क्या?
वो मैं तुम्हें यहाँ आने पर ही बताऊंगी, और हाँ अपने पति को भी साथ लेकर आना।
जी
अच्छा, फोन रखती हूँ।
जी डॉक्टर, नमस्ते।
नमस्ते।
ऐसी क्या जरूरी बात हो सकती है जिसके लिए डॉक्टर ने हमें आज ही बुलाया है?
किसका फोन था शीला?
वो डॉक्टर का था, शहर से आज ही बुलाया है, शायद कुछ जरूरी बात है।
अरे भाई, तुम्हारी रिपोर्ट्स आ गई होंगी और क्या। ऐसा करते हैं कि हम कल शहर जाकर रिपोर्ट्स ले लेंगे।
लेकिन उन्होंने तो आज ही आने को कहा है और ये भी कहा है कि आपको साथ जरूर लेकर आऊं।
अरे आज कैसे जा सकते हैं, तुम्हें पता है ना आज शिक्षा केंद्र का उद्घाटन है और मेरा वहाँ जाना बहुत जरूरी है। अब तुम ये टेंशन वेंशन छोड़ो और आराम करो, मैं शिक्षा केंद्र के लिए निकलता हूँ।
जी अच्छा।
ये डॉक्टर लोग भी ना बेकार में डरा देते हैं, लेकिन ऐसी क्या बात हो सकती है कि उन्होंने आज ही आने को कहा है।
अरे कौन है, अरे कौन है अंदर, जल्दी बाहर निकाल।
कौन है? पिंटो। ओह, ए पिंटो।
क्या बात है विनोद?
देखना बाहर कोई है।
कौन हो सकता है?
बाहर निकाल, कौन कौन है अंदर?
रुक मैं देखता हूँ।
अरे क्या हो रहा है, अरे के हो रहा है यो?
अरे हवलदार साहब आप?
अरे बाहर निकल जल्दी, मेरा भेज आना खा चल।
लेकिन बात क्या है?
अरे खून हुआ है यहाँ।
खून?
क्या हुआ पिंटो?
रात इस हॉस्टल के वार्डन का किसी ने खून कर दियो है।
क्या, वार्डन का खून?
अरे दीदे फाड़ फाड़ के क्या देखे मने, इब बाहर निकल जल्दी, सबके कमरे की तलाशी लेनी है। अरे तुझे अलग से कहना पड़ेगा के, अरे बाहर निकल जल्दी।
चल विनोद फटाफट बाहर चलते हैं।
हाँ हाँ चल।
गांव वालों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि आज हमारे गांव में शिक्षा केंद्र खुलने का सपना पूरा हो गया और इसमें हमारे गांव के प्रधान जी का बहुत बड़ा योगदान रहा।
सुरेंद्र, ये सुमन के पिताजी तो बहुत अच्छा बोलते हैं।
अरे मास्टर हैं तो अच्छे से तो बोलेंगे ही ना।
लेकिन BDO साहब अगर इसके लिए मंजूरी ना दिलवाते तो ये काम इतना जल्दी मुमकिन नहीं था। और हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात ये है कि इस शिक्षा केंद्र का उद्घाटन करने आज खुद BDO साहब यहाँ पधारे।
अरे ये तो शंकर के पिताजी हैं।
BDO हैं?
वाह यार, शंकर के पिताजी के भी क्या ठाट है ने?
वो तो है यार।
अब मैं BDO साहब से निवेदन करूंगा कि वो अपने कर कमलों से फीता काटकर इस शिक्षा केंद्र का उद्घाटन करें।
जयपाल।
हाँ
चला जा। आ बैठ।
ठीक है। सूरज तुझे पक्का यकीन है ना वहां मुझे मेरी समस्या का समाधान मिल जाएगा?
अरे एकदम पक्का यकीन है। मैंने अगर शेखर जी को HIV पॉजिटिव होने के बावजूद भी एक अच्छी जिंदगी जीते हुए नहीं देखा होता तो शायद मैं भी इस बात को नहीं मानता।
ये शेखर जी,
अरे चल ना मिलवाता हूँ, वो भी वहीं पर होंगे।
ठीक है।
अरे सुमन, पर ये यहाँ अकेली और रो क्यों रही है? सुमन, ए सुमन, क्या कर रही है और वो भी अकेले?
कुछ नहीं।
देख, पूरे गांव की ऐसी कोई बात नहीं है जो कटोरी से छुपी हो। एक एक की खबर रखती है कटोरी। बता क्या बात है?
कहा ना कटोरी, कोई बात नहीं है।
अच्छा कोई बात नहीं है तो यहाँ अकेले बैठे हुए ऐसे ही रो रही है?
कौन रो रहा है? मैं तो नहीं रो रही।
देख, तू सीधे तरीके से बताएगी या मैं तेरे माँ बापू से जाकर पूछूं?
नहीं कटोरी, उनसे कुछ मत कहना।
तो फिर बता क्या बात है?
कटोरी, मैं माँ बनने वाली हूँ।
क्या? लेकिन सुमन।
कटोरी, मेरे पास और कोई चारा नहीं बचा है। मुझे मर जाना चाहिए। हाँ मुझे मर जाना चाहिए, यही सही रहेगा।
अरे मरे तेरे दुश्मन, पहले ये बता कि कौन है वो?
नहीं।
अरे मैं पूछ रही हूँ कौन है वो जो गांव की सीधी सादी लड़कियों को बहला फुसला कर उनके साथ ये सब कर्म कर रहा है? देख सुमन, मुझसे कुछ मत छिपा, मुझे सारी बात बता। बता क्या हुआ था?
वो मोहित ने मुझे अकेले बुलाया था और वहाँ।
अच्छा तो ये बात है, पर एक चुंबन से ज्यादा तो तुम दोनों के बीच कुछ नहीं हुआ ना?
नहीं।
देख, जो भी कुछ हुआ, जितना भी हुआ, गलत हुआ, लेकिन फिर भी यही कहूँगी कि लड़की तेरा पैर फिसलने से बच गया।
मतलब?
मतलब कि तू माँ नहीं बनने वाली है।
क्या?
अरे पगली, एक तो तुम लड़के लड़कियों को कुछ पता नहीं, ऊपर से माँ बाप भी कड़ी नजर नहीं रखते। अब आगे से संभल के रहना, समझी? चल अब तू घर जा।
कटोरी, तुम ये बात किसी को?
नहीं बताऊंगी। चल अब घर जा और अपनी पढ़ाई में ध्यान दे।
नमस्ते शेखर जी।
अरे सूरज, आओ आओ बैठो।
जी
और सुनाओ, कैसे आना हुआ?
शेखर जी, ये मेरा दोस्त जयपाल है, आपको फोन पर बताया था ना मैंने इसके बारे में।
हाँ हाँ, कैसे हो जयपाल?
जी बस ठीक हूँ।
क्या बात है, तुम बहुत निराश दिखाई दे रहे हो।
इसकी जिंदगी खुद के लिए सजा बन जाए, वो निराश नहीं होगा तो क्या होगा।
लेकिन तुम अपनी जिंदगी को सजा क्यों समझते हो? ये जिंदगी तो जीने के लिए है।
शेखर जी, कैसी है ये जिंदगी जिसमें हम हर पल मरते हैं, हर पल अपनी आने वाली मौत का इंतजार करते हैं।
जयपाल, ये तुम नहीं जिंदगी के प्रति तुम्हारी निराशा बोल रही है।
शिखर जी, एक HIV पॉजिटिव इंसान के लिए यही निराशा तो जिंदगी का कड़वा सच है।
वो क्या है ना शिखर जी, कल ही जयपाल के मालिक ने जयपाल को HIV पॉजिटिव होने की वजह से नौकरी से निकाल दिया।
लेकिन हमारे कानून ने ये हक किसी को नहीं दिया कि कोई किसी को सिर्फ इस बिना पर नौकरी से निकाल दे कि वो HIV पॉजिटिव है। जयपाल, तुम्हें इसके लिए लड़ना चाहिए था।
लड़ाई किस किस से लड़ूं मैं? उस समाज से जो HIV पॉजिटिव लोगों से नफरत करता है, या उस मौत से जो हर रोज मेरे करीब आ रही है, या खुद से जिसके पास अब सिर्फ पछताने के अलावा कोई चारा नहीं रह गया, कोई चारा नहीं।
देखो जयपाल, मैं तुम्हारा दुख और तकलीफ समझ सकता हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपनी सोच, अपना नजरिया बदलना होगा।
लेकिन इसकी शुरुआत,
लगता है तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं है। चलो मैं तुम्हारी डॉक्टर से मुलाकात करवा देता हूँ। और हाँ, एक काम करो, ये नंबर रख लो।
जी।
ये एक वकील का नंबर है, इनसे मेरा नाम लेकर बात कर लेना। उम्मीद है कि ये तुम्हारी नौकरी वापस दिलवाने में तुम्हारी मदद जरूर करेंगे।
जी, शुक्रिया।
अरे भाई, शुक्रिया की कोई जरूरत नहीं, चलो अब।
बुल्ले नू समझावण आईया भैणा ते भर जाईया, बल्ले बुलिया साडा कहना छड़दे पल्ला राईया, आल नबी औलाद नबी नू तू क्यों लीका लाईया, जेड़ा सानू सैयद सदे दो सख मिले सजाइया मनिया
और दोस्तों अब बारी है हमारे अगले सेगमेंट की जिसका नाम है क्या किया जाए।
अच्छा जगत एक बात बताओ, अगर तुम खुद को एक एचआईवी पॉजिटिव व्यक्ति की जगह रखो और सोचो कि तुम्हारे अधिकारों का हनन हो रहा है तो तुम ऐसी हालत में क्या करोगे?
क्या करूँगा? अरे मतलब साफ है प्रेमा कि मैं अपने अधिकारों के लिए लड़ूंगा, कानून की मदद भी ले सकता हूँ और अपनी लड़ाई को तब तक जारी रखूंगा जब तक कि मुझे इंसाफ नहीं मिल जाता।
तो दोस्तों ये तो था हमारे जगत जी का जवाब, लेकिन जब यही सवाल हमारे सामूहिक संवाददाताओं ने हमारे श्रोताओं से पूछा तो उन्होंने क्या जवाब दिया, आइए सुनते हैं।
सबसे पहले तो यह है कि जागरूकता होनी बहुत जरूरी है, और अगर तब भी अगर उसके जो है अगर उसको प्रत्याग किया जा रहा है उसके लिए जो है उसको अगर ऐसी भावनाएं हो रही है कि नहीं इसको एचआईवी एड्स है अपने पास लाना चाहिए तो उसको मानव आयोग में जाकर अपनी शिकायत दर्ज करनी चाहिए ताकि वो इस पर उचित कार्रवाई करते हुए उसको उसका अधिकार दिला सके।
पहले तो गाँव की पंचायत बुलानी चाहिए, गाँव में ये निर्णय लेना चाहिए कि उसे अधिकारों से वंचित क्यों किया जा रहा है, और अगर मतलब गांव में बात ना बनी तो उसे फिर क्षेत्र के बड़े अधिकारियों से बात करनी चाहिए, फिर जो उनका निर्णय हो उसे मानना चाहिए।
अगर कोई व्यक्ति एचआईवी पॉजिटिव है और समाज के द्वारा या उसे लगता है मैं उपेक्षित हूँ या मेरा उपेक्षा की जा रही है तो उसे सर्वप्रथम प्रशासन की सहायता लेनी चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन को ही पकड़ना चाहिए और सबसे बढ़िया माध्यम जिलाधिकारी के द्वारा हो सकता है। अगर फिर भी एडमिनिस्ट्रेशन के रूप में उसे मदद ना मिले तो उसे न्यायालय की शरण में जाना चाहिए।
अपने अधिकारों के लिए अगर उसे वंचित किया जाता है तो एचआईवी द्वारा बहुत सी संस्थाएं बनाई गई हैं, उनमें शिकायत दर्ज करानी चाहिए, एनजीओ या फिर हेल्पलाइन जैसी संस्थाएं हैं या फिर बहुत सारी संस्थाएं हैं, जैसे कोई वो पुलिस में भी संपर्क कर सकता है क्योंकि किसी को किसी के अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता है।
तो दोस्तों ये थे हमारे श्रोताओं के जवाब जिन्हें जानने की कोशिश की हमारे सामूहिक संवाददाताओं ने, और हमें सुनकर अच्छा लगा कि आप अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ने का जज्बा रखते हैं।
और दोस्तों अब समय हो चुका है आपसे इजाजत लेने का, लेकिन जाने से पहले मैं आपको बता दूं, जानकारी और मनोरंजन से भरा ये कार्यक्रम नई दिशा आइडियो सिंक मीडिया कम्बाइन द्वारा अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन के वित्तीय सहयोग से प्रस्तुत किया जा रहा है।
और दोस्तों अब हमें दीजिए इजाजत,
अगले सप्ताह फिर मिलेंगे इसी समय इसी रेडियो स्टेशन पर, तब तक के लिए
नमस्कार।